Om Shanti. 15 December 2001. जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है, अभी उसमें यह ऐड करना, ठीक है ना? डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ, यह जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है ना? तो ऐसे हाथ उठाओ, टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट रखेंगे, अच्छा। बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिखकर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशान आप देख सकते हो, देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो, जो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी हम, आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की प्यासी आत्माएं हैं, एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएगी। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है, ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है, प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन किसमें एवर रेडी बनना है? बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी। 15 दिसंबर 2001 की मुरली, 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, अभी यह एडिशन करना। कौन सी एडिशन? कल कहा था ना, जिम्मेवारी देते हैं कि रोज, बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितना घंटा मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसकी हर एक अपने पास चार्ट रखना उसका। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, यथार्थ रूप से कितने घंटे मनसा सेवा की वह हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मंगाएंगे, देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना है या हिलता रहता है। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है, अभी उसमें यह ऐड करना, ठीक है ना? डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ, यह जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है, तो ऐसे हाथ उठाओ, टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट रखेंगे, अच्छा। बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिख कर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो, देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो, जो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी हम, आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की प्यासी आत्माएं, एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से ही खुश हो जाएंगे। जिम्मेवारी का ताज। दूसरी बात यहाँ कही है, बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है, ब्रह्मा बाप अपने गेट का, घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है, प्रकृति सफाया करने के लिए इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, क्या अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। तो दूसरी बात कही इंतजार की, और तीसरी एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन किसमें एवर रेडी? संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना, किस लिए एवर रेडी? बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी। तो जिम्मेवारी का ताज हिलता तो नहीं है, और बाबा अचानक पूछेंगे एक दिन, कौन सी जिम्मेवारी का ताज पहनना है। मनसा सेवा की जिम्मेवारी का ताज। कौन सी जिम्मेवारी का ताज पहनना है? संसार की आत्माओं के दुख, दर्द और परेशानी को समाप्त करने का। स्वयं को जिम्मेवार समझना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के कई सारे अर्थ होते हैं। एक तो जिम्मेवारी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्थात ड्यूटी है, कर्तव्य है, ये मुझे करना है। दूसरा एक अर्थ भी होता है, आई एम एक होता है रिस्पॉन्सिबल एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, अर्थात जिस तरह हम प्रतिक्रिया करते हैं उसकी कला, वह एबिलिटी, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो ऐसे दो मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कहा जाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात में, किन चीजों में? एक तो कहा कि दुखों से छुड़ाना, इस पर हमने कई बार चर्चा की है कि स्वयं को जब हम रिस्पॉन्सिबल समझते हैं तो क्या हो जाता है, पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक पावर है। जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी को हो, उतनी ही उसी अनुपात में उसे शक्तियां भी आ जाती है। ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेट पावर, ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्वयं को रिस्पॉन्सिबल समझना, ये एक बहुत ऊंची धारणा है। एक पिता अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा बहुत ध्यान से चलना, केयरफुल हो। तो बेटा कहता है यू बी केयरफुल, क्योंकि मैं तुम्हारे कदमों में चल रहा हूं, मैं केयरफुल नहीं रहूंगा, तुम केयरफुल हो, क्योंकि मेरे कदम, तुम जहां कदम रख रहे हो उस कदम पर मैं कदम रख रहा हूं। अगर हम दुनिया वालों को कहें कि ध्यानपूर्वक चलो तो वो क्या कहेंगे, पहले तुम ध्यानपूर्वक चलो, क्योंकि हम तुमको फॉलो कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम किसी को कहें बी केयरफुल, क्या करना है, पहले हमें केयरफुल हो जाए, नहीं तो छोटा बच्चा जैसा कह रहा है वैसे हो जाएगा। हमारे कदम केवल दुनिया को उपदेश देना, केवल वही हमारा लक्ष्य नहीं है। उपदेश तो कोई भी दे सकता है, उपदेश देने के लिए क्या चाहिए, थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी अथॉरिटी, और उपदेश देना चालू। तो स्वयं को रिस्पॉन्सिबल समझना, और उतनी गहराई से समझना कि हम रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे एक एक संकल्प, हमारा एक एक बोल, हमारे शब्द, हमारी भावनाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारे भाव, ये सभी संप्रेषित संसार में होते हैं। सारे संसार में ट्रांसमिशन हो रहा है इसका, एक एक संकल्प का, हमें नहीं पता चल रहा है परंतु हो रहा है। क्यों ऐसा होता है कि संसार की आत्माएं मधुबन में आती है और ऐसा होता है कि जैसे उनका टेंशन किसी ने खींच लिया। कुछ दिन अव्यक्त मुरली में एक शब्द आया था ना, टेंशन, जैसे वो तुम्हारे पास साइंस की मशीन है, वैक्यूम क्लीनर, वो कैसे खींच लेती है, सक कर लेती है, वैसे तुम भी खींच लो। तो वैसा अनुभव होता भी है आत्माओं को। क्यों होता है? क्योंकि संसार में इतना दुख, अशांति, परेशानी और टेंशन है, यहाँ के वायुमंडल में आते ही वो थोड़े समय के लिए लुप्त हो जाता है। क्यों? वो केवल स्थान का ही नहीं, यहाँ रहने वाली जो आत्माएं हैं, उनके श्रेष्ठ संकल्प, उनका पवित्र जीवन, जहां पवित्रता सहज और नेचुरल हो गई, अब उसका वो जो संघर्ष था वो खत्म हो गया है, सहज पवित्रता है। अब पुरुषार्थ बहुत सारी दूसरी चीजों का या सूक्ष्म रूप का है पवित्रता के। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? संकल्पों की, भाव की, भावना की, कल्पना की, एक एक बोल, एक एक कर्म, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने ये भाव हमारे अंदर प्रगाढ़ होगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं जिम्मेवार हूं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, है, परंतु इंटेंसिटी उसकी उसकी प्रगाढ़ था, वो जितना भाव सघन होगा उतना ही, कहीं कहते हैं कि अगर तुम्हें मुक्त होना है तो रिस्पॉन्सिबल हो जाओ पहले, रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्रीडम आएगा। हम सोचते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाए तो मुक्त होंगे, फ्रीडम, परंतु फ्रीडम की परिभाषा में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रीडम कहां से जन्म लेता है? मुक्ति जिम्मेवारी से, जिम्मेवार हो जाओ और फिर मुक्ति होगी। तो स्वयं को बार 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 याद दिलाना, यज्ञ अर्थात कोई स्थूल, ईंट, दीवार, पत्थर, मधुबन, ये सब तो नहीं है। यहां की ईंटें हम हैं, हमारे संकल्प है, हमारे संकल्प ही सुरक्षा कवच है यज्ञ का। यदि वो कमजोर है, वो विकारी है, उनमें निर्बलता है, तो ये यज्ञ भी निर्बल होगा। इसमें आने वाली जो आत्माएं हैं उनकी पालना हम कैसे करेंगे, जो अभी अभी आ रही है, जबकि भगवान के जाने का समय है, उनको वो पता ही नहीं अभी तक क्या हुआ इस यज्ञ में, वो यज्ञ का इतिहास, वो संघर्ष, वो केवल अभी आएंगी तो थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। ना उन्होंने यहाँ की पालना ली है, ना दादियों की पालना ली है, ना बड़ों की पालना इतनी ली है, अभी भी आई है। उनकी पालना हमारे संकल्पों के द्वारा होगी, और केवल कहना नहीं, केवल, परंतु उसको जीना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। केवल कहना कि हम मुक्तिदाता है, हम मुक्तिदाता है, इससे काम नहीं होगा। खलील गिब्रान करके एक बहुत बड़ा कवि और बहुत बड़ा लेखक ऑथर हुआ है, उसने एक बहुत सुंदर चीज एक जगह लिखी है। उसने लिखा है एक व्यक्ति के बारे में एक कहानी, कि वह व्यक्ति जो होता है उसके पास कोई काम नहीं होता है, तो एक नया बिजनेस चालू करता है। वो कहता है मैं मुक्तिदाता हूँ, हे संसार की आत्माओं इन विकारों से छूटो, कब तक इसमें डूबे रहोगे, आओ मेरे पास, मैं तुम सबको मुक्ति दूंगा। तो लोग को तो इसकी आदत है ना, कितने ही ऐसे धर्म स्थापक आके गए, पैगंबर, तीर्थंकर, ईश्वर पुत्र संसार में आके गए, उन्होंने भी यही कहा था कि आ जाओ हमारे पास, हम मुक्ति देंगे। पर लोगों के पास समय कहाँ है, लोगों को तो शादी करानी है, घर बसाना है, बिजनेस करना है, तो वो गांव गांव में घूमता था, एक ही चीज कहते कि मैं मसीहा हूँ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और उसे पता था कोई आने वाला नहीं था, इसके लिए वो और ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि लोगों को तो पता था कि ये मुक्तिदाता है, इसके पास जाएंगे, पर इसके पास जाएगा कौन, इसके पास जाना अर्थात संन्यास, इसके पास जाना अर्थात घरबार छोड़ना, वो तो हम कर नहीं सकते, तो इसीलिए वो ज्यादा ही प्रसिद्ध हो गया। पर एक बार मुसीबत ऐसी खड़ी हो गई, ये एक नव युवक सामने आया, कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो तो ऐसे ही कह रहा था कि मेरे पास आओ, पर वो इतना हट्टा कट्टा नौजवान, और ये तो थोड़ा सा पतला दुबला सा भी, बूढ़ा भी हो रहा था, सारी उम्र भर संदेश दिया था पर कोई उसके पीछे नहीं आया था। पर ये जो युवक था उसने कहा मैं जब तक हूँ जिंदा आपको छोड़ूंगा नहीं, जब तक आप मुझे मुक्ति नहीं दे दो। तो वो क्या कहेगा, वो कहता है ठीक है चलो मेरे पीछे, और वो उसके साथ घूमता है। तो इतना परेशान हो जाता है ये व्यक्ति, मुक्तिदाता, तथाकथित मुक्तिदाता, क्योंकि ये इसे बिल्कुल ध्यान रखता है वो क्या कर रहा है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, और रोज कसरत वगैरह करता है और अपनी बॉडी बनाता है। तो वो कहता है तुम इतना सब क्यों करते हो ये व्यायाम। वो कहता है मैं, आप मुझे मुक्ति देने वाले हो ना, मुक्ति के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा तो वहां तो अच्छा तो दिखना चाहिए, बॉडी भी तो अच्छी चाहिए। तो दिखाया है कि वो उसके साथ घूमते रहता है, ऐसे 4 साल गुजर जाते हैं, और फिर 4 साल के बाद कहता है कि अभी तक तुमने मुझे मुक्ति नहीं दी, क्या हुआ मुक्ति का। वो कहता है अभी रुको, उसकी नींद खराब हो जाती है, इसका क्या करे, दिन रात ये पीछे पड़ा रहता है 24 घंटा, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। और मैंने ही कहा था कि मैं मुक्ति दूंगा, और सबको मेरे साथ ही घूमते हुए इसको लेके जाके कहता हूँ कि आ जाओ मेरे पास, मैं मुक्ति दूंगा, मैं मसीहा हूँ। ऐसे करते करते और 6 साल बीत जाते हैं, तो वो बहुत गुस्सा होता है युवक, वो कहता है कि मुझे मुक्ति कब, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आया हूँ। वो कहते हैं कि मुक्ति मैं कहाँ से दूँ तुमको, मुक्ति का मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं भी पता नहीं मुक्ति का क्या होती है, स्वर्ग क्या होता है, मैंने तो एक बिजनेस के रीति से चालू किया था और तुम तो सही में मेरे पीछे पड़ गए हो, और तुम मेरे शिष्य हो के ऐसी बातें मत करो। वो कहता है मैं सबको बता दूंगा अब, वो कहता है ऐसा मत करो, तुम मेरा पीछा छोड़ो। वो कहता है मैं तुम्हारा पीछा तभी छोड़ूंगा जब आप ये मुक्ति का बिजनेस बंद करोगे, मैं तुम्हारा पीछा तभी छोड़ूंगा जब तुम ये बिजनेस मुक्ति देने का दूसरों को बंद करोगे। तो दिखाया है उसने इसी तरह से कि केवल कहने मात्र नहीं, केवल कह रहे हैं हम मुक्तिदाता हैं, हम मसीहा हैं, हम उद्धार मूर्त है, आधार मूर्त है जगत के, और हमें उसका कुछ भी अनुभव नहीं, ना कुछ पता है उसके बारे में, केवल हमने पढ़ लिया है, मुरलियों में आया है और याद कर लिया है, और वो रटे रटा, वो जो रटन है वो चालू है। क्या उस मुक्ति का हमें अनुभव है? मैं मुक्त हूं, कोई भी बंधन, इमोशनल बॉन्डेज, फिजिकल बॉन्डेज, इंटेलेक्चुअल बॉन्डेज से मुक्त। कोई आत्मा ना हमें याद करे, ना हम किसी संसार की आत्मा को याद करे, वो जो लगाव है जिसमें मन डूबा रहता है उससे मुक्त। कोई हमें मिस ना करे, हम किसी को मिस ना करे। मैसेज भेजते हैं ना, आई एम मिसिंग यू, वो कर रहे हैं, इसका मतलब हमने ही अवसर दिया है उन्हें, हमने ही अवसर दिया है, हमने ही थोड़ा सा झुकाव दिखाया है, इंटरेस्ट दिखाया है, प्यार प्रकट किया है, मर्यादा के विरुद्ध सुख देने का प्रयत्न किया था, शब्द बोले थे, भावनाएं प्रकट की थी कभी ना कभी, तभी तो इनकी उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई। नहीं तो कोई चलता फिरता व्यक्ति मैसेज करता है क्या कि आई एम मिसिंग यू करके? नहीं करेगा। ना हम किसी को याद करें, ना कोई हमें याद करे, ऐसी हमारी स्थिति हो, निर्बंधन मुक्त, मुक्ति का अनुभव यही करना है, यहीं पर, यास देही यास जन्मी, इसी जीवन में और इसी जन्म में, तो ही हम दूसरों को कह सकेंगे जो हम कह रहे हैं उसका हम पहले ही स्वरूप हो, या फिर कहते कहते ही अंदर में वो पुरुषार्थ चालू है स्वरूप बनने का, दोनों ही चीजें साथ साथ। परंतु जीवन बहुत बार ऐसे ही, कितना लंबे ब्राह्मण जीवन ही ऐसा गुजर जाता है कि उसमें समझ में ही नहीं आता है करना क्या है, क्या करे, कौन सा पुरुषार्थ करे। रोज सुनते हैं पुरुषार्थ की बातें, पर करना क्या है? आपका क्या पुरुषार्थ चालू है? हम भी यहाँ पर जो भी फॉरेनर्स आते हैं या इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाते हैं, उनको हम ये प्रश्न जरूर पूछते हैं, आपका पुरुषार्थ क्या चालू है? वो मंगाता है उनको, करना क्या है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मुरली अभी सुन लिया, क्लास बहुत अच्छी थी, सब था अच्छा, पर करना क्या है? नहीं, जरूरत तो है, नयापन तो लाना है, विचारों में नयापन। वो जो कह रहा है वो तो सबको पता है, पर मुझे क्या करना है उसके साथ, करना क्या है, बस यही एक प्रश्न है। महाराष्ट्र में एक महेश सुरेश भट्ट है, वो बहुत अच्छी एक कविता लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है, एक माझा प्रश्न लाख मोलाचा, हे करावे कि ते करावे कि ते करावे कि ते करावे कि ते करावे, एक ही मेरा प्रश्न है $1,000,000, पर मुझे ये पता नहीं, एक ही प्रश्न है समाज के लिए, वो कह रहे ये करे कि वो 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 क्या करे करना क्या है? उपदेश तो बहुत है, लिखत बहुत है, किताबें बहुत है, क्लासेस बहुत है, लेक्चर्स बहुत है, मुरलियां बहुत सुन ली। वो महाभारत में दिखाते हैं ना, सांदीपानी के आश्रम में जो श्री कृष्ण और उसका भाई रहता है ट्रेनिंग के लिए गुरुकुल में, तो वहां से वो परशुराम आता है, तो परशुराम उनको कहता है कि वो कृष्ण उनको कहता है कि आप आए, तो परशुराम उनको कहता है तुमने ही मुझे बुलाया है, माखन बहुत खा लिया, माखन बहुत खा लिया, राज बहुत खेल ली, लीलाएं बहुत कर ली, अब वो करो जो करने आए हो इस धरती पर। वो दिखा है ना गुरुकुल के, वहां से पहले गोकुल से कंस को मारता है और कंस को मारने के बाद सीधा सांदीपानी के आश्रम में चले जाता है। अब तक का जीवन इस तरह से गया है, तो उसको कहता है कि ये सब तुमने बहुत कर लिया, रास बहुत खेल ली, लीला बहुत कर ली, माखन बहुत खा लिया, अब वो करो जो करने आए थे, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। मुरलियों में भी आता है, बाबा कहते हैं ना अब वो करो जो करने आए थे, बी रिस्पॉन्सिबल। ये सोचना, ये समझना, ये जानना कि मुझे क्या करना है, जिस तरह की मेरी परिस्थितियां हैं, जो सेवा मुझे दी गई है, जिस स्थान में मैं हूं, उस स्थान में जितनी बुद्धि है उस बुद्धि के साथ, जैसे संस्कार है उन संस्कारों के साथ, जैसा पास्ट है उसकी पृष्ठभूमि पर मुझे अब क्या करना है, ये मुख्य प्रश्न है। टू बी और नॉट टू बी, बस ऐसे ही ना कहते रह जाए हम हैमलेट की तरह, क्या करना है, ये करे कि वो करे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां मैं हूं वहां पर मुझे क्या करना है। दूसरी बात, यहां बाबा ने इंतजार की कही है। उस दिन हमने पुकार पर चर्चा की थी, जो हमने पुकार रहे वो इंतजार भी कर रहे हैं। यहां पर बाबा कह रहे समय पुकार रहा है, समय इंतजार कर रहा है, ब्रह्मा बाप इंतजार कर रहा है, प्रकृति इंतजार कर रही है, और एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है, शिव बाबा इंतजार कर रहा है, मधुबन की संपूर्णता, संपूर्ण स्वरूप और काल, समय, श्रेष्ठ कर्म, कर्तव्य, महान अंतकरण की आवाज, वो तो पुकार है, ये आज इंतजार कह रहे बाबा। तो जो हमारा इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार बाबा कहते खत्म करो। अगर हमें ये न्यूज आ जाए या कोई आके कहे कि कोई आपका इंतजार कर रहा है वहां पर एक घंटे से, तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे पहुंचने के लिए, या कोई फोन करके बता दे कि हम लोग दो घंटे से आपका वेट कर रहे हैं कहां पहुंचे, तो हम कुछ तो करेंगे जल्दी जाने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए, वो त्वरा तो होगी ना, तो जल्दी करना, धीरे धीरे नहीं है, फास्ट। एक सेकंड में, अगले संडे है छठवां प्रश्न, एक पुरुषार्थ, एक सेकंड में पहुंचना, करेंगे देखेंगे प्लान बनाएंगे नहीं, तीव्र पुरुषार्थ है एक सेकंड में करना हर बात को, तुरंत करना हर चीज को, अभी अभी सुना अभी अभी किया, अभी अभी सुना उसके ऊपर गहरा चिंतन किया, अंदर में समाया और फिर तुरंत किया। बिना अंदर समाये वो एक्शन में नहीं आता। आत्मा को प्रवचन न प्रवचन लभ्या, प्रवचन से आत्मा को नहीं पाया जा सकता, न मेधावी, मेधा से पवित्र आत्मा को नहीं पाया जा सकता है, शास्त्रों में लिखा है, न प्रवचन से, न तर्क से, न बुद्धि से, गहराई में जाना होगा, तो ही इस आत्मा तक पहुंचा जा सकता है, इसके संस्कारों को जाना जा सकता है, इसको समझा जा सकता है। जो सूक्ष्म बातें हैं ज्ञान की, वो बिना उस गहरे तल पर उतरे समझी ही नहीं जा सकती। आत्मा के तल पर जब तक हम नहीं उतरते, तब तक ये बातें केवल शब्द है, वो हमारी नहीं है। तो इंतजार पूरा करना है। वहां से फोन आ रहा है प्रकृति का, क्या कह रही है, कब आ रहे हो, कब पहुंचोगे, कहां पहुंचे, हम क्या कहें, कहां फंसे, ट्रैफिक में फंसे, विचारों के, संकल्पों के, बंधनों के, संबंधों के फंसे हैं बीच में, वो इंतजार कर रहे हैं, इंतजार। और तीसरी बात बाबा ने यहां कही है, कौन सी, एवर रेडी। एवर रेडी अर्थात वो तो है, रेडी अर्थात तैयार, सदा तैयार। क्या ऐसे हम तैयार हैं बाबा कह रहे, किस किस बातों के लिए तैयार, यहां जाने के लिए, केवल शरीर छोड़ने के लिए नहीं, संपन्न बनने के लिए तैयार, तैयारी की भी तैयारी आवश्यक, एवरग्रीन की भी तैयारी। अभी 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 इसी वक्त अगर भगवान यहीं आ जाए, यही सभा में, और कहेंगे चलो, तो हम तैयार हैं अभी, राइट नाउ, कि फोन करना है, किसी को इन्फॉर्म करना है, कमरे को लॉक करना है, मोबाइल से कुछ डिलीट विलीट करना है, कुछ ईमेल्स क्लियर करने हैं, अब भी आ जाए यहां और कहा चलो, मैं लेने आया हूं, चलो, बस सब छोड़ा और चल दिए उसके साथ, ऐसी स्थिति है। ना किसी को देखना है, ना किसी से मिलना है, ना किसी से बात करना है, ना कहीं कुछ चेक करना है, ना कुछ रखना है, ना बैंक का सोचना है, ना घर का सोचना है, ऐसे केवल संसार में थोड़ा सा रहे हुए, ऐसी निर्लिप्त, ऐसी अलिप्त स्थिति। या केवल ये कहना कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, इसकी प्रैक्टिस अभी से करनी है। बाबा ने कितनी बार कहा है कि कुछ भी याद ना आए, सेवा भी याद ना आए, कुछ भी याद ना आए। अरेबियन लिटरेचर में एक बताते, एक लखड़हारा जा रहा है, इतना दुखी है, इतना दुखी है, उसके सिर पर लकड़ियों का बोझ है, और फिर कहता है कि ये भी कोई जीवन है, इससे तो मौत आ जाए तो बहुत अच्छा। तो दिखाया उसमें एक छाया, वहां से जाती रहती है मौत, वो सुन लेती है, और वो आती है उसके पास और कहती है कि क्या तुमने मुझे याद किया, तो कहता है तुम कौन हो, कहते मैं मौत हूं, तुमको लेने आई हूं, अभी तुमने याद किया ना कि मुझे जीवन ही छोड़ देना है। वो कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, ये जो सामान मैंने नीचे रखा है ना, बस ये सिर पर रख दो, बस उसके लिए याद किया था। व्यक्ति कितना भी दुखी है, परंतु कहता भी है कि छोड़ दू, परंतु जीवेशना उसे छूटती नहीं है। ये कहना कि हम एवर रेडी है और एवर रेडी रहना, ये अलग बातें हैं। अभी कहा और चल दिए। बाइबल में दिखाया एक अमीर साहूकार व्यक्ति जीसस क्राइस्ट के पीछे आता है और कहता है कि मुझे आपके साथ चलना है, बहुत साहूकार व्यक्ति, क्या मैं आ सकता हूं। वो कहता है कि पहले जाओ, जितनी धन संपत्ति तुम्हारे पास है वो सब गरीबों में बांट दो और फिर मेरे पीछे आओ। तो फिर वो दो कदम पीछे हटता है, कहता है ये तो मेरे से नहीं होगा, आना तो चाहता हूं पर ये मैं नहीं छोड़ सकता। तो तैयार रहना अर्थात ऑर्डर आया और चल पड़े, पीछे नहीं देखना, किसी को याद नहीं करना, ऐसी नष्ट मोहास्थिति कि रोज ही हर पल प्रतिपल हमारी तैयारी हो। कभी भी वो अंतिम समय का अंतिम घड़ी आ सकती है। हमारा विनाश अर्थात संसार का विनाश, हम गए अर्थात सब खत्म, वो विनाश हो या ना हो उसका छोड़ो, पर हम गए अर्थात सब गया। इसके लिए मन की स्थिति ऐसी हो जैसे इस देह में है और इसको छोड़ा, अभी है और अभी छोड़ा, ऐसी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो कहा कि भगवान अभी यहां आ जाए और कहे कि मेरे साथ चलो, तो चलेंगे, चल पड़ेंगे। कुछ भी देखना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी से फोन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आए और चले, हम है तैयार, चलो चलो दिल दार, चलो हम शाह।